Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ओ ओ ओ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत पांचवें अध्याय में सातवां मंत्र है सवृक्ष कालाकृति पर्वण्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम् धर्मावहम् पापनुदम् भगेशम् ज्ञात्वात्मास्तम् अमृतम् विश्वधामः तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवने समेद्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभावकी ज्ञानबलक्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसितात् नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणम् करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः स परमात्मा मुमुक्षुओं का लक्ष्य रूप जो परमात्मा है मुमुक्षु जिसको चाहता है वो वृक्ष कालाकृति भी ही पर्वण्य वृक्षाकृति और कालाकृति कौन से वृक्ष है जिस वृक्ष में सभी पक्षियां रहती हैं वो वृक्ष सामान्य संसार में वृक्ष हैं लेकिन उनमें कुछ पक्षियां जिन वृक्षों में कुछ पक्षी रहती हैं तो दूसरे पक्षी उसमें नहीं रहते। उदाहरण के रूप में, जैसे जिस वृक्ष में गिद्ध, चील और बगुले रहते हैं, उन पक्षियों में और पक्षी नहीं रहते। परंतु ऐसा एक वृक्ष है कि जिसमें सभी पक्षी समान रूप में रहते हैं, उस वृक्ष का नाम क्या है? अश्वत्थ। हालांकि अश्वत्थ वृक्ष का नाम है, अश्वत्थ माने पीपल। पीपल में गिद्ध और चील बगुले नहीं रहते हैं सामान्यतया, लेकिन यहां जिस वृक्ष को पीपल ये संज्ञा दी गई है, वह वृक्ष में गिद्ध और चील सभी रहेंगे। सामान्यतया पेड़ों में शेर को रहते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है कि जिसमें शेर भी रहता है। सामान्यतया पेड़ों में मछली के रहते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है कि जिस पेड़ पर मछली भी रहती है। बच्चों से पूछो कि पेड़ में मछली रहती है कि नहीं, तो आजकल के बच्चे कहेंगे कि पेड़ में कैसी मछली रह सकती है। बोले संसार में एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जिसमें मछली भी रहती है, उस वृक्ष का नाम क्या है? तो वो लोग नहीं बता पाएंगे, वो लोग नहीं बता पाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी नहीं बता पाएगा, साइंस भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, किसी ने पूछा यदि नदी में, सरोवर में आग लग जाती है तो फिर मछली कहां जाएंगे? तो किसी लड़के ने कह दिया पेड़ में जाएंगे, तो मार खा गया वो। मास्टर ने पीटा उसको। मास्टर ने पूछा सरोवर में आग लगती है तो वहां सरोवर की मछली कहां जाएंगे? तो एक लड़का ने फट से कहा कि सर पेड़ में चले जाएंगे, तो मार खा गया वो। तो मछली कहीं पेड़ में जाती है? लेकिन वो ये नहीं कह सका कि सरोवर में आग लग ही नहीं सकती है, तो वो उत्तर नहीं दे सका। तो ये वृक्ष का नाम है संसार वृक्ष। यहां कठोपनिषद और गीता में इसका प्रमाण है, भागवत आदि में भी संसार को वृक्ष के रूप में निरूपित किया गया है। इसको वृक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्कृत भाषा के अनुसार वृक्ष उस धातु से बनता है जो, जिस धातु का अर्थ छेदन अर्थ होता है। वृक्ष छेदन, छेदन है, काट करके नष्ट किया जाए उसको छेदन कहते हैं, और उसी को वृक्ष कहते हैं। जब तक नहीं काटोगे तब तक ये नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जड़ इतनी गहराई है, इतनी व्यापक है कि ये अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। बनते समय तो अपने आप बन गया, लेकिन नष्ट होते समय अपने आप नष्ट नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके काटने के उपाय बता दिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हे अर्जुन, जिस संसार वृक्ष का मैंने तुम्हारे सामने प्रतिपादन किया, वर्णन किया, और वृक्षों की तरह ये साधारण वृक्ष नहीं है, जो कि कुछ समय के बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जावे, ऐसा ये वृक्ष नहीं है। ये तो ऐसा विशाल वृक्ष है कि वह बिना काटे नष्ट होने वाला नहीं है। कबीर भट्ट आप लोगों ने सुना है गुजरात में भरूच के आगे नर्मदा के किनारे एक बार हम नारेश्वर जा रहे थे तो नारेश्वर जाते समय रास्ते में ही तो बताया कि यहां कबीर बट है महाराज जी, वो देख लो, दूर से दर्शन कराया क्योंकि नर्मदा उस पार था कबीर बट। बोले ये कबीर बट है, इसी बड़ वृक्ष के नीचे कबीर जी बैठकर ज्ञान साधना करते थे, इसीलिए इसका नाम हो गया कबीर बट, काफी बड़ा था। और जब हम कलकत्ते गए तो वहां एक और बट का वृक्ष है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने, बोटनिकल गार्डन करके उसको बोलते हैं, लेकिन एक ही बड़ वृक्ष का वह गार्डन है, वहां दूसरा कोई पेड़ नहीं है, एक ही बड़ वृक्ष कहते हैं। उसकी इतनी जड़ें हैं इतनी कि उसको जो शाखा है उसमें से जो तने निकल के आए थे वही उस जमीन में लगकर एक जड़ हो गया, फिर उसके आगे निकला वो शाखा, फिर वहां से और दूसरा, फिर वो जड़ निकला जमीन के साथ जुड़ गया वो दूसरा जड़। तो कहते हैं आज तक उसका मूल जड़ कौन है पता लगाना मुश्किल है, वो इतना फैल गया है, एकड़ों में फैल गया है, वो घूमते रहो घूमते रहो, और हर जो जड़ है वो ऐसा लगता है कि यही मूल है। जैसे वह वृक्ष फैला हुआ है इसी तरह ये संसार वृक्ष फैला हुआ है। भगवान कहते हैं कि काटे बिना ये नष्ट होने वाला नहीं है। ऊर्धमूल मदस्साकम अस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस्वी यस्य पर्णानी यस्तम वेद सवेदवित। किसी भी पेड़ की सुंदरता उसके पत्तों से होती है, उसके फूलों से और उसके लगे हुए फलों से। और इस संसार की सुंदरता का मूल कारण क्या है? वेद में जो 80,000 मंत्र हैं वो 80,000 मंत्र ही संसार वृक्ष के पत्ते हैं, क्योंकि उसमें सभी काम्य कर्मों का विधान किया गया है। जैसे हमने कल संकेत किया था कि आंख यदि खराब है, रोशनी कम हो रही हो, तो चक्षुषु उपनिषद का जप करो। जब हमने बताया था तो बहुत लोगों ने पूछा कि चक्षुषु उपनिषद क्या है महाराज, कहां है, कैसा है? तो उमा बहन के पास था तो कॉपी ला के रख दिया, कुछ चक्षुषु उपनिषद अब नियमित पाठ करो, देख लो क्या आकर्षण है। ये सब काम्य मंत्र, ये करोगे तो ये फायदा होगा, ये करोगे तो ये फायदा, ये बताने वाले जो मंत्र हैं उन्हीं को ही गीता में छंद पद के द्वारा संकेत कर दिया। ये सब छंद मंत्र, वेद के जो मंत्र हैं यही संसार वृक्ष को बड़ा सुंदर बनाए रखता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इसकी अपनी कोई रूप नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व इसका नहीं है, और आश्चर्य की बात है कि फिर भी उपलभ्यते, रूप नहीं है फिर भी दिखता है, यही तो आश्चर्य की बात है। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है फिर भी नीलिमा दिखती है, दिखती है कि नहीं? आकाश में कोई रूप नहीं है फिर भी नीलापना दिखता है कि नहीं? इसी तरह ये संसार वृक्ष का अपना कोई स्वरूप नहीं है फिर भी दिखता है, सभी को दिखता है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ऐसा नहीं समझना कि सन्यासी होने के बाद संसार नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा, दिख रहा है। न रूपमस्य, इसके रूप को खोजने के लिए नजदीक जाओगे तो ये मिलने वाला नहीं है, फिर भी दिखता है। जैसे आप लोगों ने दिखा हो बरसात के समय में इंद्रधनुष बनता है, सप्तरंगी इंद्रधनुष बनता है, और आपको दूर से वो इंद्रधनुष दिखेगा, यहां से उत्पन्न हुआ, यहां जुड़ा हुआ है, और जिस पॉइंट में वो इंद्रधनुष उत्पन्न हुआ ऐसा लग रहा है आपको, वहां जाके खड़े हो जाओ तो कुछ भी नहीं है। ये संसार ठीक इसी तरह इंद्रधनुष की तरह है। नरोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोर्ण चादिरिण च संप्रतिष्ठा। ये आदि कब स्टार्ट हुआ है, कब शुरू हुआ है, इसके कोई निश्चित देश काल आदि नहीं है। और ये कहां जाकर ये समाप्त हो जाएगा, ये भी इसकी सीमा नहीं है। इसके उत्पत्ति का आद्य क्षण और इसके विनाश का अंतिम क्षण इसका कोई पता नहीं है, इसलिए नान्तोर्ण चादर न च संप्रतिष्ठा। और वास्तव में इसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अपनी स्थिति नहीं है। ये कहां टिका हुआ है, ये अपने आप में ये स्थिति इसकी नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, सम्यक प्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा न। आज जिस रूप में है उसी रूप में कल नहीं मिलेगा, कल जिस रूप में उसी रूप में परसों नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी न संप्रतिष्ठा। अदश्च मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम। लेकिन ऐसा होता हुआ भी ये संसार वृक्ष का मूल इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इसको कोई भी न उखाड़ फेंक पाएगा। अन्य साधनों के द्वारा न कोई इसको काट सकता है, न उखाड़ सकता है। जंगलों में आग लगती है कभी कभी, तो उस जंगलों में लगे हुए आग में छोटे मोटे पौधे सब जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो जैसा का वैसे रहते हैं। उस आग से कोई भी उनको प्रभावित नहीं होते, कोई असर नहीं होता उन पेड़ों को। इसी तरह ये संसार वृक्ष है, उसको न तो तुम लौकिक हथियारों से काट पाओगे, न भौतिक अग्नि से इसको जला पाओगे। तो इसको काटने का एक ही उपाय बताया, असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा। जो दृढ़ असंग रूपी शस्त्र है वही दृढ़ शस्त्र है, और वो शस्त्र यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप संसार वृक्ष को आप काटकर नष्ट कर सकते हैं। और गीता में तो यहां तक कह दिया गया है कि एक एक व्यक्ति का एक एक संसार है और एक एक वृक्ष है। ऐसा नहीं समझ लेना कि एक ने काट लिया और वो संसार वृक्ष स्वरूप से नष्ट हो गया और लोगों को वृक्ष की प्रतीति नहीं होगी, ऐसा नहीं समझ लेना। तुम्हारे काटोगे तो तुम्हारे सामने दिखने वाली ये जो संसार वृक्ष प्रति वही कटेगा, तुम्हारा वृक्ष कटेगा और का वृक्ष नहीं कटेगा। ये संसार क्योंकि एक एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा संसार बनाया है, तो उसके अपने ही संसार जो है वो उच्छेद होगा संसार वृक्ष। इसलिए कहा कि सवृक्ष काल, इसको असंग शस्त्र से ही काटा जा सके इसलिए वह वृक्ष है। कालाकृति वृक्षाकृति, आकृति को दोनों के साथ जोड़ लेना, भाष्यकार ने ऐसे ही अर्थ किया है। सवृक्षाकारेभ्य स कालाकारेभ्य परो वृक्ष कालाकृति भी ही परा, ऐसा। कालाकृति की व्याख्या भी, काल के जो अवयव हैं वही काल की आकृति है, वो भी ठीक इसी प्रकार से न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। काल का अपना कोई रूप नहीं, फिर भी ये काल है और काल में सारे जगत टिका हुआ है। ये काल भी एक प्रकार के पूरे वृक्ष की तरह है। लेकिन ये परमात्मा, ये कालाकृति और वृक्षाकृति यानी संसार वृक्ष और संसार का नियमन करने वाला जो विभाजन करता काल है, भूत भविष्य वर्तमान का विभाजन करता काल है, उससे भी वह पर परे है, क्योंकि उसके पास असंगता रूपी शस्त्र है, इसलिए वृक्ष उसके सामने टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान स्वरूप अग्नि है, इसलिए वृक्ष वहां जलकर राख हो जाएंगे। और एक जीव आत्मा के पास भी वो असंगता स्वरूपी शस्त्र यदि मिलता है तो संसार वृक्ष को काट डालेगा, और यदि जीवात्मा के पास भी ज्ञानाग्नि की प्राप्ति होती है तो ये संसार वृक्ष दग्ध हो जाएगा, अन्यथा इसको दग्ध करने और नष्ट करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके सामने इस संसार वृक्ष की और काल वृक्ष की जो है उपलब्धि नहीं है, वो पर अन्य काल से परे है। इसलिए कठोपनिषद में बताया ना, भयादस्याद अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मर्त्यो धावति पंचमा। ये जो मृत्यु है वह उसी के कारण डरता हुआ चलता है, अन्यथा मृत्यु का और डरने की किसी कोई डरने का कारण ही नहीं है। मृत्यु किससे डरे? संसार में मृत्यु किसी से नहीं डरता, यदि डरता है वो मृत्यु से परे है, वह उस परमात्मा से ही डरता है, इसलिए वह काल से परे है। काल उसमें विवर्त है, काल उसी में प्रतीत है, उसी में बाधित है। यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम्, और जिस अधिष्ठान से अयम प्रपंच, पंचों का पंचर, पांच का पंचर को प्रपंच कहते हैं, पंचर माने तोड़ना है ना, पंचर माने अंग्रेजी में पंचर बोलते हैं ना, उसको तोड़ देना, टुकड़ा ना, आप लोग तो छेद करना कहोगे है ना, तो हम कहेंगे उसको तोड़ना, टुकड़ाना, टुकड़ा करना। तो पांच का पंचर क्या किया, तो पांच को पांच टुकड़ों में बांट दिया, तो पांच का पंचक, पंचमहाभूतों का ये पंचीकरण, पृथ्वी का पंचक, पृथ्वी का पंचक क्या है, पृथ्वी जो है उसको पहले दो भाग में बांटो, फिर उसके बाद जो दूसरा भाग है उसको फिर चार भाग में बांटो, तो पृथ्वी के कितने टुकड़े हो गए, पांच टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा 50% का पृथ्वी का और बाकी चार टुकड़े 12.5-12.5% के, तो ये पृथ्वी का पंचर हुआ ना, टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद जल का पंचर करो, जल को टुकड़ा टुकड़ा बनाओ, जल का पांच हिस्सा, पहले दो हिस्सा करो, दूसरे हिस्से का फिर चार हिस्सा करो, जो 50% जल एक टुकड़ा, एक टुकड़े में 50% जल है और बाकी चार टुकड़े में 12.5-12.5% जल है। इसी तरह फिर तेज का पंचर करो, तेज का टुकड़ा बनाओ, 50% के दो टुकड़े बना लो, तेज का एक टुकड़ा 50% सुरक्षित है, बाकी जो दूसरा टुकड़ा 50% का था उसको फिर चार टुकड़ा बना लो 12.5-12.5%। इसी तरह वायु के टुकड़े बना लो, ये टुकड़े कोई हथियारों से करने नहीं जाना हो, नहीं तो कि तुम्हारे हथियार से क्या वायु टुकड़ा में आ जाएगा, टुकड़ा जाएगा, कट जाएगा, कि बुद्धि से टुकड़ा करना, विचार से टुकड़ा करना।
तो 50-50% के दो टुकड़े कर दिए वायु के, 50% सुरक्षित रखा, बाकी दूसरा 50% था उसका फिर 12.5-12.5%। आकाश का उसी तरह टुकड़ा कर लो, तलवार से नहीं, विचार से। 50-50 के दो टुकड़े कर लो, उसमें से पहला 50% आकाश एक ही रख सुरक्षित रहने दो, बाकी 50% का फिर 12.5-12.5% चार टुकड़े कर लो। तब 5 टुकड़े आकाश के, 5 टुकड़े वायु के, 5 टुकड़े तेज के, 5 टुकड़े जल के, 5 टुकड़े पृथ्वी के। इनमें नियम क्या है? 50% जो है वो सुरक्षित रहेगा, उसमें अन्य के जो 4 टुकड़े हैं उनको मिलाया जाएगा। जैसे पृथ्वी 50% है, आकाश के जो 4 टुकड़े थे वह एक टुकड़ा पृथ्वी को दे दो, एक वायु को दे दो, एक तेज को दे दो, एक जल को दे दो,